जितने अरकान उनसे मुरक्किब है, बस मुरक्कब है, बस उनको अदा कर देने ही से जिंदगी की ताकत हासिल हो जाती है। इसलिए उसने सोचा कि अब रोटी का बोझ अपने मेदे में क्यों रखूं, क्यों ना उसे निकाल फेंका जाए ताकि पेट हल्का हो जाए। खाने के अरकान तो मैं अदा कर ही चुका हूं। ये अहमकाना ख्याल जो इसने कायम किया और फिर इसकी पैरवी की, इसकी सजा भी तो आखिर इसी को भुगतनी चाहिए। उसको जानना चाहिए था कि जब तक रोटी पेट में जाकर हजम ना हो और खून बनकर सारे जिस्म में फैल ना जाए, उस वक्त तक जिंदगी की ताकत हासिल नहीं हो सकती। खाने के जाहिरी अरकान भी अगरचे ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके बगैर रोटी मैदे तक नहीं पहुंच सकती, मगर महज इन जाहिरी अरकान के अदा कर देने से काम नहीं चल सकता। इन अरकान में कोई जादू भरा हुआ नहीं है कि इन्हें अदा कर देने से बस तिलिस्माती तरीके पर आदमी की रगों में खून दौड़ने लगता हो। खून पैदा करने के लिए तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है, इसी के मुताबिक वो पैदा होगा, और इसको तोड़ोगे तो अपने आप को खुद हलाक करोगे। जाहिर को हकीकत समझने के नतायज। ये मिसाल जो इस तफसील के साथ मैंने आपके सामने बयान की है, इस पर आप गौर करें तो आपकी समझ में आ सकता है कि आज आपकी इबादतें क्यों बेअसर हो गई हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपसे बारहा बयान कर चुका हूं, सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने नमाज रोज़े के अरकान और इनकी ज़ाहरी सूरतों ही को असल इबादत समझ रखा है, और आप इस ख्याल खाम में मुब्तला हो गए हैं जिसने ये अरकान पूरी तरह अदा कर दिए, उसने बस अल्लाह की इबादत कर दी। आपकी मिसाल उसी शख्स की सी है जो खाने के चारों अरकान यानि निवाले बनाना, मुँह में रखना, चबाना, हलक से नीचे उतार देना, बस इन्हीं चारों के मजमे को खाना समझता है और ये ख्याल करता है कि जिसने ये चार अरकान अदा कर दिए उसने खा लिया और खाने के फायदे उसको हासिल होने चाहिए। खा इसने इन अरकान के साथ मिट्टी, पत्थर, ईंट पेट में उतारे हों या रोटी खाकर फौरन खय कर दी हो, अगर हकीकत में आप लोग इस हिमाकत में मुब्तला नहीं हो गए हैं तो मुझे बताइए ये क्या माजरा है कि जो रोज़ेदार सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है, वो आयन इस इबादत की हालत में झूठ कैसे बोलता है, गीबत किस तरह करता है, बात बात पर लड़ता क्यों है, इसकी जबान से गालियां क्यों निकलती हैं, वो लोगों का हक कैसे मार खाता है, हराम खाने और हराम खिलाने के काम किस तरह कर लेता है, और फिर ये सब काम करके भी अपने नज़दीक ये कैसे समझता है कि मैंने खुदा की इबादत की है। क्या इसकी मिसाल उस शख्स की सी नहीं है जो राख और मिट्टी खाता है, महज खाने के चार अरकान अदा कर देने को समझता है कि खाना इसको कहते हैं। रमज़ान के बाद फिर बेकायदगी, रमज़ान के बाद फिर बेकायदगी। फिर मुझे बताइए ये क्या माजरा है कि रमज़ान भर में तकरीबन 360 घंटे खुदा की इबादत करने के बाद जब आप फारिग होते हैं तो इस पूरी इबादत के तमाम असरात शव्वाल की पहली तारीख ही को काफूर हो जाते हैं। हिंदू अपने त्योहारों में जो कुछ करते हैं वही सब आप ईद के ज़माने में करते हैं। हद यह है कि शहरों में तो ईद के रोज़ बदकारी और शराब नोशी और खुमारबाजी तक होती है, और बाज़ ज़ालिम तो मैंने जैसे देखे हैं जो रमज़ान के ज़माने में दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को शराब पीते और जिना करते हैं। आम मुसलमान खुदा के फजल से इस कदर बिगड़े हुए तो नहीं हैं, मगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद आप में से कितने ऐसे हैं जिनके अंदर